नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं भवतारिणी। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में लक्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बैटल के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कहा, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध। ईरान ने कहा, होर्मुज जलदमरू मध्य से अस्थायी सुरक्षित मार्ग के मुद्दे पर ओमान के साथ वार्ता अंतिम चरण में। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में 12 लोगों की मौत। नेपाल में बाढ़ पीड़ितों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लक्जमबर्ग के बीच मजबूत और भरोसेमंद संबंध हैं। डॉ जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लक्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बैटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लक्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
Ours is a very trusted relationship.
हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
Ratification likely in the coming future.
इस अवसर पर श्री जेवियर बैटल ने कहा कि लक्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैकटेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही।
ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। ईरान ने आज कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए अस्थायी मार्ग बनाने को लेकर ओमान के साथ उसकी बातचीत अंतिम चरण में है। तेहरान में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बताया कि समझौते को आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के साथ पंजीकृत किया जा सकता है। प्रवक्ता ने जलमार्ग में असुरक्षा के लिए अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र में तनाव जारी रहा तो व्यावसायिक जहाज इस मार्ग पर सुरक्षित महसूस नहीं कर सकेंगे। कल कतर के एक प्रतिनिधिमंडल के ईरान दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यात्रा मध्य पूर्व में तनाव कम करने के कतर के प्रयासों का हिस्सा थी। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। कफर रुमाने गांव में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। एक दूसरे हमले में वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें एक चिकित्सा कर्मी की मौत हो गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 3 दिनों में दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 27 लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला के ठिकानों और हथियार ले जा रहे लोगों को निशाना बनाया। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने आज दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पूर्व और दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 5 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया। ये अभ्यास निर्धारित समय पर हो रहा है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हाल ही में सियोल वाशिंगटन के महत्वपूर्ण अभ्यासों को सीमित कर दिया गया था। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि वार्षिक रक्षात्मक अभ्यास का उद्देश्य समुद्री, हवाई और साइबर क्षेत्रों में 3 देशों की परिचालन और संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। हुती गुट ने सऊदी अरब पर यमन के कई प्रांतों में हवाई और क्रूज मिसाइल हमले करने का आरोप लगाया है। ईरान समर्थित सशस्त्र गुट ने कहा कि सऊदी अरब ने अलजौफ, अल वायदा, मारिब और ताइज प्रांतों में कई हवाई हमलों और क्रूज मिसाइल हमले किए। हुती ने उत्तरी प्रांत अलजौफ के खब व अशराफ जिले के ऊपर सऊदी अरब के CH-4 टोही ड्रोन को मार गिराया।
यमन के सरकारी बलों ने कहा कि उनके लड़ाकू विमानों ने आज दिन में मध्य प्रांत अलबायदा में हूती ठिकानों पर 13 हमले किए। सरकारी बलों ने अलजौफ में भी नया सैन्य अभियान शुरू किया और प्रांतीय राजधानी अल हज्म के पूर्व में स्थित हूती नियंत्रण वाले अल लबनात सैन्य अड्डे की ओर बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में पिछले 4 दिनों से जारी भीषण लड़ाई में दोनों पक्षों के कम से कम 117 लड़ाके मारे गए हैं। यमन में वर्ष 2014 के अंत से संघर्ष जारी है। उस समय हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना और उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
COP31 सम्मेलन से कुछ सप्ताह पहले अजरबैजान की राजधानी बाकू में आज 4th संयुक्त राष्ट्र जलवायु सप्ताह की शुरुआत हुई। सरकारी वित्तीय संस्थानों, कंपनियों और जलवायु विशेषज्ञों की ये 5 दिन की बैठक 11 सितम्बर तक चलेगी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए खर्च किया गया प्रत्येक डॉलर $15 का आर्थिक लाभ सृजित कर सकता है। हालांकि रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई में देरी से दुनिया को हर साल 1.5 लाख करोड़ डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। एक रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर एक साथ मिलकर काम करने से स्वास्थ्य देखभाल खर्च में कमी आएगी, कामगारों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और मौसम की अनिश्चितता से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसके अनुसार साल 2025 में दुनिया भर में करीब 64 लाख लोगों की असामयिक मौत बाहरी वायु प्रदूषण के कारण हुई, जबकि घरों के भीतर होने वाले प्रदूषण से 20 लाख लोगों की जान गई। संयुक्त राष्ट्र का कहना है इस समस्या से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, आधुनिक रसोई ईंधन, बेहतर खेती और ठोस कचरा प्रबंधन जैसे समाधान पहले से मौजूद हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर साल 2050 तक ऐसे 25 उपायों को पूरी तरह लागू कर दिया जाए तो प्रदूषण से होने वाली 14 करोड़ 40 लाख असमय मौतों को रोका जा सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363, उसके बाद नवलपरासी पूर्व में 222, नवलपरासी पश्चिम में 221 और रसुआ में 169 दर्ज की गई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बैटल के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कहा कि विश्व वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध। ईरान ने कहा हॉर्मुज जलडबरों मध्य से अस्थायी सुरक्षित मार्ग के मुद्दे पर ओमान के साथ वार्ता अंतिम चरण में। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।